उर्वशी का दर्शन पक्ष। मानव मन की समस्त उदात्त प्रक्रियाओं का केवल एक लक्ष्य होता है, सुख का वरण और दुख से निवृत्ति। उसके समस्त कार्यकलाप इसी लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। मानव मन की यही प्रवृत्ति दर्शन शास्त्र और काव्य शास्त्र में परिलक्षित होती है। यद्यपि ये दोनों शास्त्र एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होते हैं, क्योंकि दर्शन शास्त्र में मस्तिष्क के गहन चिंतन का आधिक्य होता है और काव्य शास्त्र में हृदय की गहरी भावुकता की प्रधानता, तथापि ये विरोधी नहीं वरन एक दूसरे के पूरक हैं। दर्शन और काव्य का परस्पर अटूट संबंध स्थापित करते हुए डॉक्टर विश्वंबर नाथ उपाध्याय लिखते हैं, कवि दार्शनिक को अपना पथ प्रदर्शक अनजाने में ही मानता आया है। आज तक का इतिहास कम से कम यही है। जो कवि स्वयं दार्शनिक धाराओं के लिए उनके प्रवर्तक या प्रचारक किसी बड़े दार्शनिक पर निर्भर रहे हैं, यथा श्री शंकराचार्य पर, अतः कविता और दर्शन का अटूट संबंध चला आ रहा है। इसीलिए यह दृढ़ शब्दों में कहा जाता है कि दर्शन को काव्य से पृथक नहीं किया जा सकता। विचारक कवियों की कृतियां तो स्वतः काव्यमय दर्शन बन जाती हैं। उर्वशी का दर्शन पक्ष। उर्वशी में दर्शन पक्ष का पर्याप्त स्पष्ट विवेचन हुआ है। इसका सम्यक अध्ययन करने के लिए इसे निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है। पहला ईश्वर, दूसरा काल, तीसरा देह, चौथा जीवन, पांचवा प्रकृति और पुरुष। पहला ईश्वर। उर्वशी में ईश्वर को सर्वशक्तिमान और सृष्टि का स्रष्टा माना गया है। ईश्वर ही मनुष्य के जीवन कार्यों का नियंत्रण करता है। मनुष्य करता नहीं, वरन इस परम सत्ता के इंगित पर कार्य करने वाला है। इसी भाव को उर्वशी में इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। यह सब उनकी कृपा सृष्टि जिनकी निगूढ़ रचना है। झुके हुए हम धनुष मात्र हैं, तनी हुई ज्या पर से किसी और की इच्छाओं के बाण चला करते हैं। सृष्टि का जितना ही प्रसार है, सब इसी परम सत्ता का रूप है। इस संसार में न कोई पुरुष है और न कोई नारी, बल्कि एक ही सत्ता का प्रतिमान है। वह निरभ्र आकाश जहाँ की निर्विकल्प सुषमा में न तो पुरुष मैं पुरुष, न तुम नारी, केवल नारी हो। दोनों हैं प्रतिमान किसी एक ही मूल सत्ता के, देह बुद्धि से परे नहीं जो नर अथवा नारी है। ईश्वर सर्वव्यापक है, वह प्रकृति के कणकण में रमा हुआ है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह संसार उसी का एक रूप है। ईश्वरीय जग भिन्न है इस गोचर जगती से, इसी अपावन में अदृश्य यह पावन सना है। ईश्वर और प्रकृति दो विरोधी सत्ताएं नहीं है। प्रकृति और ईश्वर प्राप्ति में विरोध उत्पन्न नहीं करती, बल्कि उसमें समायक होती है, सहायक होती है। भ्रांति नहीं, अनुभूति, जिसे ईश्वर हम सब कहते हैं, शत्रु प्रकृति का नहीं, न उसका प्रतियोगी प्रतिबल है। किसने कहा तुम्हें परमेश्वर और प्रकृति ये दोनों साथ नहीं रहते? जिसका भी ईश्वर तक जाना है, उसे तोड़ लेने होंगे सारे संबंध प्रकृति से। और प्रकृति के रस में जिसका अंतर रमा हुआ है, उसे और जो मिले किंतु परमेश्वर नहीं मिलेगा। दूसरा काल। काल की गति निरंतर प्रगतिशील है। वह बिना किसी प्रतीक्षा किए हुए, बिना किसी रुकावट के अबाध गति से चलता रहता है। यह काल अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं। समस्त सृष्टि इस काल के नियंत्रण में चक्कर काट रही है। सिंधु विंध हिमवान खड़े हैं दिगायाम में, जैसे एक साथ ज्यों काल त्यों काल, देवता के महान प्रांगण में भूत भविष्यत वर्तमान सब साथ साथ ठहरे हैं, बातें करते हुए परस्पर गिरा मुक्त भाषा में। तीसरा देह। भारतीय दर्शन में देह को मृत्यु माना गया है, अर्थात यह नित्य नहीं है। उर्वशी ने भी देह को मृत्यु मानकर इसी मत को मान्यता दी है। देह मृत्यु, दैहिक प्रकाश की किरणें मृत्यु नहीं है। अधर नष्ट होते मिटती झंकार नहीं चुंबन की, यह अरूप आभा तरंग अर्पित उसके चरणों पर निराकार जो जाग रहा है सारे आकारों में। जीवन। उर्वशीकार ने जीवन को कार्य कारण की लड़ी माना है, जिसमें निरंतर संघर्ष आते रहते हैं। अर्थ खोजते हो जीवन का, लड़ी कार्य कारण की बहुत दूर तक बिछी हुई है पीछे अंधियाले में, चलो जहां तक भी अतीत में चरण चरण पर मात प्रतीक्षानिरत प्रश्न मग में मिलते जाएंगे। पांचवा प्रकृति और पुरुष। उर्वशी में प्रकृति और पुरुष का विवेचन करने से पूर्व यह आवश्यक है कि इनके स्वरूप को समझ लिया जाए। प्रकृति और पुरुष की विशद व्याख्या सांख्य दर्शन में मिलती है। सांख्य दर्शन में तीन तत्वों पर विचार किया गया है, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ। व्यक्त के 23 भेद हैं और एक कार्य कारण की परंपराएं मूला प्रकृति के परिणाम है। अव्यक्त को मूला प्रकृति कहते हैं, ज्ञ को पुरुष कहते हैं। सांख्य के अनुसार मूला प्रकृति जड़ और पुरुष चेतन है। पुरुष निष्क्रिय, निर्गुण और निर्लिप्त है। मूला प्रकृति में तीनों गुणों की अवस्थिति होती है, इसलिए इसे तीनों गुणों की साम्यावस्था माना गया है। अर्थात अव्यक्तावस्था में सत्व सत्व रूप में, रजस रज रूप में, तथा तमस तमो रूप में परिणत होते ही रहते हैं। इसमें कोई वैषम्य उत्पन्न नहीं होता। प्रकृति के सात्विक अंश से महत तत्व की अभिव्यक्ति होती है, इसे बुद्धि तत्व भी कहते हैं। महत में भी सत्व, रजस और तमस गुण अंतर्निहित होते हैं, किंतु प्रधानता सत्व गुण की होती है। बुद्धि तत्व का धर्म है किसी कार्य के करने का निश्चय करना। इसके दो प्रकार के रूप होते हैं, सात्विक जैसे धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं ऐश्वर्य आदि, और तामसिक जैसे अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्चर्य आदि। जीवात्मा के योग का प्रधान साधन बुद्धि है, और यही बुद्धि पुनः प्रकृति और पुरुष के सूक्ष्म भेद की अभिव्यक्ति करती है, अर्थात बुद्धि के द्वारा योग तथा मुक्ति भी होती है। प्रतिक्षण परिणाम होने के कारण बुद्धि तत्व से परिणाम के द्वारा अहंकार तत्व बन जाता है। अहंकार से 11 इंद्रियों की अभिव्यक्ति होती है, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना तथा त्वक, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और इसके विषय हैं रूप, शब्द, गंध, रस तथा स्पर्श। सांख्य के अनुसार ज्ञ अर्थात पुरुष त्रिगुणातीत और निर्लिप्त है, वह एक है, किंतु जब ज्ञ पर अविद्या आदि का प्रभाव पड़ता है तो बद्ध पुरुष कहलाता है। बद्ध पुरुष सुख, दुख, मोह रूप योग्य वस्तुओं का भोग करने वाला होता है और अपनी मुक्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। इस प्रकार सांख्य में 3 प्रकार के पुरुषों पर विचार किया गया है, निर्लिप्त पुरुष, बद्ध पुरुष और मुक्त पुरुष। यदि इस विवेचन की छाया में देखा जाए तो उर्वशी प्रकृति का स्वरूप है और पुरुर्वा पुरुष का। उर्वशीकार ने इस मत को इन शब्दों में स्वीकार किया। उर्वशी चक्षु, रसना, घ्राण, त्वक तथा श्रोत्र की कामनाओं का प्रतीक है। पुरुर्वा रस, गंध, स्पर्श और शब्द के मिलने वाले सुखों के उद्वेलित मनुष्य का। उर्वशी का विश्वास है कि प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही परम तत्व की प्राप्ति होती है। जो लोग इन्हें पृथक पृथक मानते हैं वे कभी परम सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते। किसने कहा तुम्हें परमेश्वर और प्रकृति ये दोनों साथ नहीं रहते? जिसको भी ईश्वर तक जाना है उसे तोड़ लेने होंगे सारे बंधन प्रकृति से, और प्रकृति के रस में जिसका अंतर रमा हुआ है उसे और जो मिले किंतु परमेश्वर नहीं मिलेगा। अतः कहा जा सकता है कि अपने काव्य सौंदर्य की गरिमा की भांति ही उर्वशी का दार्शनिक पक्ष अत्यंत सूक्ष्म और काव्यमय है। काव्यमय शैली के द्वारा कवि ने दर्शन की गूढ़ सूक्ष्मताओं को बहुत ही सरस बना दिया है। कवि और दार्शनिक में ही तो मूल भेद है। समाप्त।